Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Yatashchodeti suryos astam yatra chagacchati तम देवाः सर्वे अर्पिता तदु नात्येति कश्चन एतद्वैतत्। आचार्य यम बालक नचिकेता को अद्वैत ब्रह्म तत्व का उपदेश कर रहे हैं। वेदांत निर्विशेष ब्रह्म तत्व का उपदेश करता है। निर्विशेष माने जिसमें न कोई सामान्य है और न कोई विशेष है। ये संसार सामान्य और विशेष का विस्तार है। संसार में भी व्यक्ति कुछ बनना चाहता है, सामान्य से अलग। सामान्य माने सामान्य, जहां सहज उपलब्ध हो, सबके दृष्टि का विषय हो, जहां सबकी पहुंच हो, वो सामान्य है। और जो सामान्य दृष्टि का विषय न हो, सबके लिए सहज उपलब्ध न हो, वो विशेष है। और प्रत्येक व्यक्ति सामान्य से विशेष की ओर जाता है। न्याय शास्त्र में सामान्य को जाति बोला है। जाति शब्द के लिए सामान्य शब्द का प्रयोग किया है। और वो सामान्य शब्द भी इसलिए प्रयोग किया क्योंकि जाति अनेकों में एक रहती है। जैसे मनुष्य में मनुष्यत्व जाति है, तो वो मनुष्यत्व जाति सब में बराबर है। राजा में भी मनुष्यत्व है और प्रजा में भी मनुष्यत्व है, स्वामी में भी मनुष्यत्व है, सेवक में भी मनुष्यत्व है, बहुत बड़ा कोई विद्वान हो उसमें भी मनुष्यत्व है, और कोई बहुत कम समझने वाला व्यक्ति है उसमें भी मनुष्यत्व है। अनेकों में जो समवेत हो जाती, उसी को सामान्य कहते हैं। पशुओं में पशुत्व रहता है, जड़ में जड़त्व, अनात्मा में अनात्मत्व, ये सामान्य माने सब में अनुगत। और विशेष का अर्थ है केवल एक में ही हो। जैसे राजा में विशेष जो भाव है वो प्रजा में नहीं है, इसलिए उसको जाति नहीं बोलते। जो अनेकों में नहीं रहती उसको जाति नहीं बोलते। तो प्रत्येक व्यक्ति सामान्य से विशेष की ओर प्रस्थान करना चाहता है, विशेष बनना चाहता है। लेकिन अद्वैत वेदांत का जो मूल तत्व है वो निर्विशेष है, वो सामान्य और विशेष से अलग है। क्योंकि ये भेद जो है सामान्य और विशेष, ये सापेक्षिक है। और जो भी चीज सापेक्षिक होती है, अपेक्षाकृत होती है, वो सत्य नहीं होती है। इसकी अपेक्षा ये, और वो यदि ना हो तो फिर वो भी नहीं है। लघु सिद्धांत कौमुदी जब हम लोग पढ़ते हैं तो एक सामान्य नियम हमको सुनाया जाता है। देवदत्तस्य एकः पुत्रः स एव ज्येष्ठः स एव कनिष्ठः। आपके दो बच्चे हैं तो आप एक छोटा एक बड़ा बोल सकते हैं, लेकिन आपका एक ही बेटा हो और आपको कोई पूछे कि छोटा बेटा कौन सा और बड़ा बेटा कौन सा, तो आप बहुत सरलता से ही उत्तर देंगे कि भैया एक ही है तो वही बड़ा और वही छोटा। और जहां भी छोटा बड़ा होता है वो दो में होता है, एक में नहीं होता है। इसकी अपेक्षा ये कालकृत सापेक्षता है। ये जो उम्र का बोध है वो कालकृत समय की अपेक्षा, किसकी अपेक्षा, ये मैंने समय की अपेक्षा है, कालकृत सापेक्षता है। और जहां पर अपेक्षाकृत होता है वहां वो नहीं होने से वो होता नहीं है, ये नियम है। और दुनिया में जो भी चीजें हैं वो अपेक्षित हैं, अपेक्षिक सत्यता है, और यही व्यावहारिक सत्यता है। जो व्यावहारिक सत्यता होती है अपेक्षिक, वो सत्य होते ही नहीं है। जैसे कोई किसी की अपेक्षा बड़ा है और कोई किसी की अपेक्षा छोटा है, और ये जैसे रंग भेद है ये भी अपेक्षिक हैं, जिसकी अपेक्षा, और जहां अपेक्षा होती है ना वहीं पर प्रतीति होती है, निरपेक्ष प्रतीति नहीं होती है। कभी आपने ध्यान दिया होगा गोरे ही गोरे सब लोग हो तो वहां गोरापन भी कम मालूम पड़ने लगता है, सारे विद्वान विद्वान ही बैठे हो ना तो विद्वान विद्वान मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको तब विद्वान विद्वान मालूम पड़ने लगता है कि जब उसके बगल में कोई मूर्ख आदमी बैठा हुआ हो, उसकी अपेक्षा। सभी गोरे ही गोरे हैं, एक उसमें काला आदमी मालूम, और वो काला फिर गोरे को ज्यादा गोरा बना देता है। ऐसा नहीं कि उसके गोरेपन को बढ़ा देता है, केवल मालूम होने लगता है, ओहो ये गोरा ये काला, कालों में गोरा ज्यादा मालूम पड़ता है, गोरे में काला ज्यादा मालूम पड़ता है। ये अपेक्षिक सत्यता है। और ब्रह्म तत्व निरपेक्ष है, उसमें अपेक्षा नहीं, इसकी अपेक्षा ये, इसकी अपेक्षा ये, वैसा नहीं है। भगवान ने भी गीताजी में बोला अनपेक्ष सुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यत सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समय प्रिय। वस्तुतः भगवान ने भक्त के लक्षण बताए कि अपने लक्षण बताए, अनपेक्ष सुचिर दक्ष, ऐसा लगता है कि भगवान ने अपने ही लक्षण बताए, क्योंकि भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं है ना। इसलिए भगवान को जब बताना होता है कि मैं कैसे हूं तो भक्त के लक्षण बता देते हैं, और जब भक्त कैसा है ये बताना हो तो अपने लक्षण बता देते हैं, और जब वो अपने लक्षण बता देते हैं तो फिर भक्त के लक्षण हो जाते हैं। कारण क्या कि भक्त और भगवान में भेद नहीं होता है। ऐसा लिखा चतुर नाम वपु एक, ये चार नाम मालूम पड़ते हैं, भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक। अनपेक्ष सुचिर दक्ष, भगवान ने कहा कि मेरा जो भक्त है वो अनपेक्ष होता है, अनपेक्ष माने ये निरपेक्ष है, अनपेक्ष माने वहां कोई अपेक्षा ही नहीं है, इसकी अपेक्षा, वहां बिल्कुल अपेक्षा नहीं। अपेक्षा का अर्थ वहां इच्छा भी है, अपेक्षा माने वासना भी है, वहां दोनों अर्थ। भक्त के जीवन में कोई इच्छा ही नहीं होती, अपेक्षा ही नहीं, और अपेक्षा नहीं तो उपेक्षा ही कि नहीं। फिर भगवान को यह कहना था, अनपेक्षा कहने की अपेक्षा उपेक्षा ऐसा करना चाहिए था कि भाई मेरा भक्त सबकी उपेक्षा कर देता है, वहां उपेक्षा भी नहीं है, न वहां प्रवृत्ति है न वहां निवृत्ति है। ये अद्वैत वेदांत बहुत मजेदार है, वहां न अपेक्षा है और वहां न उपेक्षा है, क्योंकि ये दोनों भी मनोभाव हैं। हम किसी की उपेक्षा कर रहे हैं ये भी मनोभाव है, और किसी की अपेक्षा कर रहे हैं ये भी मनोभाव है। अपेक्षा पाने की चाह है, उपेक्षा छोड़ने की चाह है। उपेक्षा माने हम छोड़ना चाह रहे हैं लेकिन वहां भी चाह है, और अपेक्षा माने हम पाना चाह रहे हैं वो भी चाह है। और अद्वैत में यही चाह जो है ना वहां नहीं होती, न पाने की चाह है और न छोड़ने की चाह, न अपेक्षा न उपेक्षा। इसलिए भगवान ने कहा कि न अपेक्षा न उपेक्षा अपितु निरपेक्षा। यहां निरपेक्ष का अर्थ है यही, न यहां अपेक्षा है और न यहां उपेक्षा। मान लो कि कोई आपके सामने कोई चीज रख रहा है, मैंने एक साधु को देखा, मेरे को बहुत अच्छा लगा, वो पैसा नहीं छूते थे, मधुबाबू पैसा ही नहीं छूते थे, वो बहुत कृष्ण साक्षात्कारी पुरुष थे, कैलाश आश्रम ऋषिकेश में रहते थे, हम भी रहते थे, हम भी पढ़ते थे, बहुत मजेदार साधु, पैसा नहीं छूते थे वो। और एक बार वो हॉस्पिटल में किसी महात्मा के सेवा में गए, तो मैंने उनको पूछा कि आप स्वामी जी सेवा में महात्मा की गए हैं, वहां तो पैसा छूना पड़ता है, अरे बोले छू लेते हैं, बोले हम अपने लिए थोड़े छूते हैं, अरे बोले वो महात्मा की सेवा के लिए छू लेते हैं, बोले उसमें क्या है, कागज का टुकड़ा ही तो है, कागज का टुकड़ा ही तो है। मेरे को बहुत अच्छी बात लगी। अब एक महात्मा थे बनारस में, जब हम लोग पढ़ते थे तो बीएचयू में, जैसे वो आते थे उधर से रिक्शा से हम लोगों को बुलाते, आओ 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 इधर आ जाओ इधर आ जाओ, जब नजदीक जाते काफी वयोवृद्ध थे तो अपने आंटी को बोलते, इसको खोलो इसको खोलो, आंटी को खोलो, मैंने कहा क्या इसके अंदर, अरे बोलो खोलो खोलो, खोलता उसमें पैसा होता, रिक्शा वाले को दे दो, फिर जो रिक्शा वाला वापस पैसा देता बोले फिर इसी आंटी में रखो, हमने कहा हम अपने जेब में रख लेते, बोले हम अपने जेब में रख लेते, अरे बोले नहीं 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 ब्रह्मचारी इसमें रखो इसमें, हमने कहा क्या आप तो पैसा छूते नहीं, अरे बोले नहीं इसमें रखो, हमने कहा कि चिमटा क्यों नहीं रखते फिर, यदि पैसा नहीं छूना है तो आप एक चिमटा ही रख लो, चिमटे से निकालने का चिमटे से देने का, वहां पर उपेक्षा हुई ना, वहां पर भाव है। और वो दूसरे महात्मा भी थे, ये कोई बुरा नहीं है, हम लोग कोई महात्मा की बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसकी अपेक्षा वो अच्छा है ना। अब वो महात्मा के सामने पैसा भी रख दे तो हम लोगों को इशारा कर देते हैं कि उठा लो तुम लोग, और नहीं भी उठाए तो उनको कोई फर्क नहीं, कोई दक्षिणा रख दी ठीक है रख दी, और वो भगत को नहीं बोलते थे कि इसको उठाओ इसको हम नहीं छू रहे हैं, कुछ नहीं रख दिया तो ठीक है, उठ के चले जाते थे, या तो हम लोग उठा के उनके कमरे में रख लो, लेकिन वो कभी नहीं पूछते थे कि वहां पैसा रखा था कहां गया क्या हुआ, किसी ने जूता पहना दिया और किसी महात्मा ने पूछा स्वामी जी जूता तो बहुत अच्छा है, बोले पहनोगे और पहनोगे बोल के उतार भी देते थे, वो बोले लो तुमको अच्छा लगा लो पहनो, कोई गर्मी के ठंडी के दिनों में कोई चादर किसी भगत ने उड़ा दी, पूछे स्वामी जी चादर तो बहुत अच्छी है, बोले तुमको चाहिए अरे बहुत मजेदार साधु थे, उनकी एक एक क्रियाओं पर मैं गौर करता था, वो अनपेक्षा। एक बार कुंभ मेले में हम एक खेत से हुए गुजर रहे थे, भूख लगी थी मेरे को, अरहर की फली थी, हमने सोचा इसी को तोड़ के खा लेता हूं, तो तोड़ के खाने लगा तो उन्होंने पीछे घूम के देखा, बोले क्या कर रहे हो ब्रह्मचारी, तो मैंने कहा वो फली खा रहा हूं, वो खड़े हो गए बोले ये किसान, जिस किसान का खेत है उसको पूछा बोले पूछा क्या, तो मैंने कहा कि इसमें क्या पूछना है, अरे बोले क्या पूछना है ये तो चोरी है, जिसके खेत से होके गुजर रहे हैं उसकी आज्ञा के बिना पूछे तुम उसकी फली खा रहे हो, ये तो चोरी है, बोले ये अच्छी बात नहीं, जब चोरी बात बोला तो मेरे हाथ से फलियां गिर गई, मेरा बात तो सही है, मेरे को लग रहा था मैं तो साधु हूं, मैं किसी की भी खेत से कोई भी चीज उठा के खा रहा अरे बोले नहीं, साधु होने का अर्थ ये नहीं होता है कि तुम किसी के भी खेत से कोई भी चीज उठा के खा लो, बोले जंगल की चीज है उसका कोई मालिक नहीं है तो ठीक है, लेकिन उसका मालिक है खेती वाला, बोले नहीं तुम नहीं खा सकते। उन्होंने मेरे को बोला क्षमा मांगो, किसान से क्षमा मांगो मैंने कहा है ही नहीं कहां से मांगू, अरे बोले नहीं जहां भी होगा उसको मालूम पड़ जाएगा तुमने क्षमा मांगी,
हमें कान पकड़ के उठ बैठक की, बोले नहीं दोबारा नहीं खाएंगे हम। बहुत मजेदार साधु, और पैसे के प्रति बिल्कुल ही मोह नहीं। माने जहां पर न अपेक्षा है और न उपेक्षा है, माने केवल है न प्रवृत्ति और न निवृत्ति, ये निर्विशेष। और ये जो अनपेक्षा शब्द है उसी का द्योतन करता है। हाँ ठीक है, नहीं है ठीक है, किसी ने प्रशंसा की वो भी ठीक है, और किसी ने नहीं की वो भी ठीक है। परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं ये भाव बहुत निम्न है। किसी ने आपकी प्रशंसा की, आओ गदगद हो गए, वाह वाह, और किसी ने गाली दी तो बहुत परेशानी, अरे उसने हमको गाली दी। ये चीजें हमारे मन की बहुत निम्न प्रवृत्तियां हैं, और साधक साधु के लिए तो बहुत छोटी चीजें हैं। एक शब्द आप किसी को बोल दो और सामने वाला सोचता है कि गए हम, मर गए मर गए मर गए, हाय हाय, अरे हमने हमको उन्होंने गाली दी, और थोड़ी प्रशंसा की तो बस खुश हो। परम पूज्य महाराज श्री ने तो एक बहुत मजेदार बात लिखी है, बोले कोई महामंडलेश्वर ने ऐसा उल्लेख किया, उसकी प्रशंसा की, गीत गाए, और उसके मन में भाव बनाओ, हो हम तो बहुत बड़े हो गए, और कोई आना छोड़ दिया, लोग आना छोड़ दिए, प्रशंसा छूट गई, और उसके बाद फिर दीनहीन बन के बैठ गया, हाय हाय हमारे पास कोई आता है। माने ये मन की कलुषिता है, दारिद्र्य। दारिद्र्य का अर्थ है बाहर से संग्रह के अर्थ में नहीं है। दारिद्र्य माने ऐसा नहीं कि बहुत सारी चीजें बाहर की हमारे पास नहीं है, ये नहीं है। और श्रीमंती वो भी नहीं है, ये जो बहुत सारी चीजें बाहर हमने संकलित करके रखी। मैंने आपको एक दिन कहा था इसी संदर्भ में, ये सारी चीजें हमें सुविधा जुटाती हैं, ये सुविधा जुटाने वाली चीजें हैं, लेकिन जो मन का जो भाव है ना वो श्रीमंती है। हमारे मन में ये भाव हो, अलम, अलम का मतलब होता है पर्याप्त, हमारे मन में भरा हुआ भाव, बस बस बस, और वो जो पर्याप्ति का भाव है वो बाहर से नहीं अपने भीतर से आए, वो बाहर के वस्तुओं के होने और नहीं होने से ना हो। जो भाव बाहर के वस्तुओं के होने और नहीं होने से आता है वो औपाधिक है, वो उपाधि जन्य है। आपको लगा कि ओहो बहुत अच्छे हैं, क्यों भैया बड़ा मकान है, सारी चीजें हैं, आहा बहुत बाहर से भाव आया है, और कभी कुछ कम हो गए तो परेशान हो गए, ये औपाधिक भाव। और जो निरुपाधिक पूर्णता का बोध है वो होने और नहीं होने से परे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, ये भी पूर्ण है वो भी पूर्ण है, क्योंकि पूर्ण से पूर्ण पैदा हुआ, और इसीलिए पूर्ण ही अवशेष रहा। ये श्रुति बहुत मजेदार है, बहुत मजेदार। हमेशा हम जैसे प्रवचन समाप्त करते हैं ना तो ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं बोलते हैं, इसका अर्थ ये नहीं होता है कि हमने अपना प्रवचन पूरा कर लिया है। वो पूर्णमदः पूर्णमिदं जब बोलते हैं तो अपने को लगता है कि ये मंत्र प्रवचन पूरे होने का है, जैसे भोजन करने का मंत्र बोलते ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु, तो आदमी ने सोचा कि भुनक्तु शब्द का प्रयोग किया है उसमें, तो ये भोजन का मंत्र है। लेकिन ये भोजन का मंत्र नहीं है, हमने इसको बना दिया है क्योंकि उसमें एक भोजन शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन बहुत उच्च कोटि की प्रार्थना है ये, बहुत उच्च कोटि की प्रार्थना है। आप बच्चों को पूछना भोजन का मंत्र बोलो तो बोलते अहम वैश्वा नरो भूतवा, बोलते कि नहीं ये भोजन का मंत्र है, ओम सहना भवतु, ये भोजन, भोजन का मंत्र नहीं है, ये भजन का मंत्र है, ये भजन का मंत्र है। आप जब भोजन करें तो ऐसा लगे कि भैया ये सारी चीजें भगवान खा रहे हैं, आपको ऐसा लगे कि हम भोक्ता नहीं है, भोक्ता तो वो, हम बोलते ना भोग, भोग किसको लगता है, भोग जीव को लगता है कि भगवान को लगता है, भोगवान, भगवान कौन है। आप किसी बंगाली से पूछा होगा, वो भगवान नहीं बोलता है, भगवान बोलता है, वो भगवान वो सही बोलता है, वो सही भगवान ही भगवान है, भोग तो भगवान को ही लगता है और हम तो केवल प्रसादिया भगत हैं। वास्तविक भोक्ता तो वही है, जिसको भोग लगता है वही भोगता है, और इस जीव में सामर्थ्य भी नहीं है, भोक्ता बनने का भी सामर्थ्य नहीं है, वही परमात्मा भोक्ता, भोक्ता भर्ता महेश्वर है। अब जब भोजन करे तो उस समय अनुभव करे कि भोजन करने वाला भी वही है, भोजन में भगवान याद आए, हमारी हर क्रिया में भगवान याद आए, यही तो भजन है और क्या है। आप भोजन कर रहे हैं और उस समय अनुभव कर रहे हैं कि भोक्ता जो है वो परमेश्वर हैं और वो जठराग्नि के रूप में हमारी भीतर हैं, हो गया आपका भजन, हो गया। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु, वो मंत्र बहुत ऊंचा मंत्र है। हम साथ साथ भोजन करें, हम साथ साथ हमारी परमात्मा रक्षा करें, साथ साथ शक्तिशाली बनाए, कोई भी जीवन में दुख का अनुभव न करे, हम किसी से भी राग द्वेष न करें, ये कितनी ऊंची प्रार्थना। हम किसी से भी राग द्वेष न करें, बहुत ऊंची प्रार्थना है, बहुत ऊंची प्रार्थना है। और इस प्रार्थना के साथ हमको जीना है, हमारा जीवन राग द्वेष विनुर्मुक्त हो, हमारा जीवन अपेक्षा और उपेक्षा से मुक्त हो, हमारे जीवन में ये चीजें ना हो, ये हमारा वास्तविक जीना है, निरपेक्ष जीना है, निरपेक्ष। और वेदांत हमें निरपेक्ष सत्य के अनुभव में ले जाता है, और ये सारी चीजें भेद हैं, इसलिए श्रुति कहती है कि वही परमात्मा है। हमारे जीवन में अपेक्षा भी पैदा करता है वही, अपेक्षा का भी मूल वही है और उपेक्षा का भी मूल वही है, मान का भी मूल वही है, सम्मान का भी मूल वही है, शांति का भी मूल वही है, अशांति का मूल भी वही है, रात का मूल भी वही है और दिन का मूल भी, सूर्योदय का मूल भी वही है और सूर्यास्त का मूल भी वही। हमें मालूम पड़ता है सूर्योदय मालूम पड़ता है, हमें सूर्यास्त मालूम पड़ता है, लेकिन ये दोनों सापेक्षिक हैं। यश्चो देति सूर्यः अंतम यत्र च गच्छति, जहां सूर्य उदित होता है और जहां सूर्य अस्त होता है, माने जिसके कारण सूर्योदय है और जिसके कारण सूर्यास्त, जिसके कारण ज्ञान है और जिसके कारण अज्ञान। भगवान ने बोला है यत्तः स्मृतिर ज्ञानमपोहनम च सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः, मत्तः स्मृतिर ज्ञानमपोहनम च, सबके हृदय में मैं हूं, और ज्ञान की विस्मृति, ज्ञान का लोप मैं करता हूं। जब हमारे अंदर से बहुत अच्छी अच्छी चीजें स्फुरित हो जाती हैं, तो उस समय हम किसको याद करते हैं, कहां याद करते हैं, और याद करते भी हैं तो हम किस समय याद करते हैं, जब बहुत अच्छी चीज याद आ गई हो, भगवान की बड़ी कृपा है, और जब कोई चीज याद नहीं आ रही हो तो उस समय हम बोलते हैं क्या कि भगवान की बड़ी कृपा है, ऐसा बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। दिमाग जब बहुत अच्छा चलता है ना, तब आप बोलते हैं ओहो भगवान की बड़ी कृपा है। जब कोई आदमी बोल रहा हो ना कि भगवान की बड़ी कृपा है, तो समझना कि सब ठीक चल रहा है। एक बार किसी मुंबई के भगत ने हमको बोला कि महाराज जब आपके पास किसी का फोन ना आए, समझना कि सब ठीक चल रहा है। सबका ठीक चल रहा है क्योंकि आपके पास फोन आया नहीं रहा है, और जैसे फोन आए हैं तो समझना चाहिए कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। जब सब कुछ ठीक होता है तब हम भगवान को बोलते हैं ठीक है तुम्हारी कृपा है, और थोड़ा खराब हो जाए तो हम नहीं बोलते हैं कि प्रभु तुम्हारी कृपा है। लेकिन स्वयं भगवान बोल रहे हैं मैं ही तुमको देता हूं ज्ञान और मैं ही उस ज्ञान का हरण भी कर लेता हूं। तो जब हरण भी कर रहे हैं वो भी तो कृपा है। दुर्योधन एक बहुत अच्छी बात थी, सत्य को जानता था वो, भले वो मानता नहीं था लेकिन जानता तो था। किसी ने पूछा कि भैया तुम बड़ी दुष्टता करते हो, बड़ी दुष्टता करते हो, ये बहुत अच्छी बात नहीं है, तुम अधर्म का काम कर रहे हो, अपने भाइयों के साथ अन्याय कर रहे हो। उसने कहा जानामि धर्मम, सत्य क्या है धर्म क्या है जानता हूं, लेकिन नचमे प्रवृत्ति, मेरी प्रवृत्ति नहीं होती। जानामि अधर्मम, अधर्म को भी जानता हूं, गलत क्या है उसको भी जानता हूं। नचमे निवृत्ति, मेरी निवृत्ति नहीं होती, वहां से लौटता नहीं हूं। बोले क्यों? बोले केनापि देवेन, मुझे नहीं मालूम। इसमें दो बातें आ गई, सत्य का बोध है, सत्य को जानता है लेकिन मानता नहीं है, और दूसरी बात आदमी हमेशा गलती को दूसरे पर डालना चाहता है, अपनी गलती दूसरे पर डालना चाहता है। उन्होंने कहा कि मेरे को नहीं मालूम है, मेरी गलती नहीं है। अरे बोली केनापि देवेन हृदयस्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। अरे बोली कोई भगवान होगा जो प्रेरक उत्प्रेरक, जो हृदय में स्थित होकर जैसे वो मेरे को प्रेरणा दे रहा है वैसे मैं कर रहा हूं।